लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र 14 सितंबर को शुरू हो गया है। इस सत्र पर भी कोविड-19 की परछाई है, लेकिन कुछ देशों के नेता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और अन्य वर्चुअल रूप से सत्र में भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 14 सितंबर को यूएन सभा के 75वें सत्र का समापन करते हुए कहा कि विश्व ने कोविड-19 महामारी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर देखा है। उन्होंने कहा कि बीते सत्र ने गहरी होती विषमताओं, धराशायी होती अर्थव्यवस्थाओं और लाखों करोड़ों लोगों को अत्यधिक निर्धनता के गर्त में धकेले जाते हुए देखा है। यूएन प्रमुख ने यूएन महासभा के 76वें सत्र का उद्घाटन करते हुए नए महासभा अध्यक्ष मालद्वीप के श्री अब्दुल्ला शाहिद को परंपरागत हथौड़ा सौंपा और निवर्तमान अध्यक्ष बोलकान बोजगीर को विदाई अभिवादन पेश किया। यूएन प्रमुख ने कहा कि बोलकान बोजगीर के नेतृत्व में यूएन महासभा ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किए जाने पर ध्यान दिया। कोविड-19 के परीक्षण, उपचार व उपकरण उपलब्ध कराए जाने की बात की और इतिहास में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान में योगदान दिया। उन्होंने शांति और सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, लैंगिक समानता और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में यूएन महासभा के काम को आगे बढ़ाया। यूएन महासचिव ने कहा, संक्षिप्त में कहें तो अध्यक्ष बोलकान बोजगीर के नेतृत्व में इस महासभा ने एक बार फिर बहुपक्षवाद और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अहमियत को साबित किया है। यूएन महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मालद्वीप के अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें सत्र का उद्घाटन करते हुए ध्यान दिलाया कि इतिहास का ये लम्हा सबसे ज्यादा आशा बनाए रखने की पुकार लगाता है, ताकि वैश्विक आबादी को ये दिखाया जा सके कि हम उनकी तकलीफों से वाकिफ हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और हम समस्याओं पर पार पाने के लिए साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं और ये कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं, दुनिया भर में टीकाकरण कर सकते हैं और महामारी से उबरने में एक हरित व ज्यादा समावेशी पुनर्बहाली का रास्ता बना सकते हैं। उत्तर अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि डेबराह लियोन्स ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का अधिकार होने के बाद दुनिया ने देश की वास्तविकता, वहां मची अफरा तफरी और फिर विरोध प्रदर्शन के दृश्य देखे हैं। ये दृश्य दिखाते हैं कि तालिबान ने सत्ता को हासिल कर ली है, मगर वो अफगान जनता का भरोसा नहीं जीत पाई है। अफगानिस्तान में सहज विकल्प उपलब्ध न होने के बावजूद देश की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और अटल संकल्प जारी रखने होंगे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि ऐसा किया जाना अफगान जनता के लिए सर्वोत्तम नतीजे सुनिश्चित करने के लिए अहम है। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की सुलभता सीमित होने पर व्याप्त चिंताओं के बीच पाकिस्तानी कार्यकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
अफगानिस्तान के लिए यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और यूएन मिशन यूनामा की प्रमुख डेबरा लियोन्स ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के बारे में गुरुवार को सुरक्षा परिषद को अवगत कराते हुए कहा कि देश की नाजुक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर ऐसे तरीके ढूंढे जाने बेहद आवश्यक हैं जिनसे देश के लिए उन अरबों डॉलर के जरिए मदद पहुंचाई जा सके जिन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। यूएन मिशन प्रमुख ने विश्वसनीय रिपोर्टों के हवाले से बताया कि बदले की भावना से हत्याएं की जा रही हैं, महिला स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है और नए तालिबान प्रशासन द्वारा मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में अब वस्तुतः तालिबान की सरकार है और संयुक्त राष्ट्र को तालिबान सरकार के उन उच्च स्तरीय सदस्यों से संपर्क व बातचीत के तरीकों पर निर्णय लेने की जरूरत है जो फिलहाल प्रतिबंधों की यूएन सूची में शामिल हैं। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की सुलभता सीमित होने पर व्याप्त चिंताओं के बीच मलाला यूसुफजई ने सुरक्षा परिषद से तालिबान को एक सुस्पष्ट संदेश भेजने का आग्रह किया कि महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों की रक्षा किया जाना किसी भी कामकाजी रिश्ते के लिए एक पूर्व शर्त है।
संयुक्त राष्ट्र और कोविड 19 महामारी की रोकथाम के उपकरण व वैक्सीन सभी को समान रूप से मुहैया कराने की मुहिम कोवैक्स में शामिल साझेदार एजेंसियों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि उच्च और मध्यम आय वाले देशों में 80% आबादी को कोविड 19 वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं, लेकिन निम्न व कम आय वाले देशों में ये संख्या केवल 20% है। कोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, सेपी, गावी और अन्य साझेदारों का समर्थन प्राप्त है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
बुधवार को जारी इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सभी उपकरण और संसाधन आय दर्जे या स्थान की परवाह किए बिना समान रूप से सभी लोगों को और समय पर वैक्सीन मुहैया कराने के लिए कोवैक्स पहल शुरू हुए एक साल हो चुका है, मगर कोविड 19 वैक्सीन की उपलब्धता की वैश्विक तस्वीर अब भी अस्वीकार्य स्तर पर है। वक्तव्य के अनुसार कोविड 19 के फैलाव के अति खतरनाक महीनों के दौरान कोवैक्स पहल शुरू की गई थी और उस दौरान इसमें भागीदार व साझेदार शामिल किए गए, मांग का जायजा लिया गया और वैक्सीन की अग्रिम खरीदारी के लिए समुचित धन भी जुटा लिया गया, मगर फिर भी शुरुआती दौर में वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा धनी देशों ने पहले ही खरीद लिया था। वक्तव्य में कहा गया है कि आज भी दुनिया भर में निर्बलों को सुरक्षा व संरक्षा मुहैया कराने की कोवैक्स की सामर्थ्य अनेक कारणों से प्रभावित हो रही है, जिनमें निर्यात पर लगी पाबंदियों, निर्माताओं और खरीदार देशों के बीच द्विपक्षीय सौदों, निर्माण क्षमता में पेश आ रही चुनौतियों और नियामक मंजूरी के लिए आवेदन दाखिल किए जाने में हो रही देरी के कारण शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक पैनल ने कहा कि यमन में 6 साल से जारी गृह युद्ध में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है और युद्ध के कारण आम आबादी में डर का माहौल लगातार बढ़ रहा है। यमन सरकार को सैनिक गठबंधन का समर्थन हासिल है, दूसरी तरफ हूती लड़ाकों के समूह को अंसार अल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसने यमन के ज्यादातर उत्तरी इलाकों पर नियंत्रण कर रखा है, जिसमें राजधानी सन्ना भी शामिल है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यह समझने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था कि पिछले 12 महीनों के दौरान युद्ध की स्थिति कैसी रही है। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के इस पैनल ने अपनी इस रिपोर्ट में उसी तरह के मानवाधिकार हनन मामलों की भर्त्सना की है जो उनकी पहली रिपोर्ट में भी शामिल किए गए थे। मानवाधिकार हनन के इन मामलों में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा समर्थित यमन सरकार द्वारा किए जाने वाले हवाई हमले और मुख्य रूप से हूथी लड़ाकों द्वारा आम आबादी पर अंधाधुंध गोलीबारी किया जाना भी शामिल है, मगर ये गोलीबारी यमन की सरकार और गठबंधन के बलों ने भी की है। ध्यान रहे कि यमन वर्ष 2015 से सरकारी सेनाओं और हूथी विद्रोही समूह के बीच विभाजित रहा है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आधार, वही हमारा तारणहार,
वही हमारा सृजनहार, वही हमारा तारणहार।
आओ चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन, आओ चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन।
उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया,
जीवन की रोटी वही, आत्मिक प्यास बुझाता वही।
उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 17 सितंबर के ट्वीट संदेश में एक आदर्श समाज की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संदेश में लिखा, एक समाज इस स्तर पर अधिक मानवीय होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित सदस्यों की भ्रातृ प्रेम की भावना से देखभाल करता है। आइए हम इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करें, ताकि कोई भी अकेला अथवा परित्यक्त महसूस न करे। वृद्धावस्था और बीमारी को एक अवसर के रूप में जिएं। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने भ्रातृत्व दिवस के अवसर पर लोम्बार्डिया के धर्माध्यक्षों के साथ उपस्थित पुरोहितों को संबोधित कर लिखा। इस अवसर पर ख्रिस्तार्घ अर्पित करते हुए महाधर्माध्यक्ष डेलपिनी ने अपने उपदेश में कहा कि आनंद का अभिवादन हर परिस्थिति में और हर युग में पुरोहितों का मिशन है। संत पापा ने भ्रातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में लोम्बार्डिया के धर्माध्यक्षों के साथ उपस्थित बुजुर्ग और बीमार पुरोहितों को लिखे संदेश में कहा, आप एक स्थिति का वृद्धावस्था का अनुभव कर रहे हैं जो एक बीमारी नहीं बल्कि एक अवसर है। बाइबल के सिमेयोन और अन्ना का उदाहरण देते हुए संत पापा ने कहा, निश्चय ही वे जब बुजुर्ग हो गए थे तभी सुसमाचार उनके जीवन में पूर्णतया प्रवेश किया और उन्होंने यीशु को अपनी बाहों में लिया एवं उनकी घोषणा की। संत पापा ने कहा कि जो बीमार हैं, वे भी सौभाग्यशाली हो सकते हैं यदि वे अपने दुख को यीशु के समान स्वीकार कर उससे क्रूस की तरह उठाते हैं। संत पापा ने बुजुर्ग पुरोहितों से कहा, बुजुर्ग और बीमार पुरोहित समुदायों में सक्रिय सदस्य हैं, जो यादों से भरे सपनों के वाहक हैं, अतः युवा पीढ़ी के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा, आपसे ख्रिस्ते जीवन और मिशन में फलने फूलने का रस आता है। अंत में संत पापा ने मजाकिया भाव में लिखा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें जो थोड़ा बुजुर्ग हूँ और थोड़ा बीमार, अधिक नहीं। कारावाजो दिवस यूनितालसी लोम्बार्डिया और सेल के तत्वाधान में भ्रातृत्व फाउंडेशन द्वारा आयोजित लोम्बार्डिया के धर्माध्यक्ष सम्मेलन की सभा के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पुरोहितों ने धर्माध्यक्षों के साथ संत मरिया दिल फोंते तीर्थस्थल पर ख्रिस्त्याग अर्पित किया। ख्रिस्त्याग अनुष्ठान मिलान के महाधर्माध्यक्ष मारियो डेलपिनी ने किया। उन्होंने याद किया कि लोम्बार्डिया के पुरोहित किस तरह महामारी के शिकार हुए। इस क्षेत्र से करीब 300 पुरोहितों में 92 पुरोहितों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई। क्षमाशीलता के केंद्र में ईश्वर हैं, जो हमारा आलिंगन करते हैं, न कि हमारे पापों और अपमानों की सूची बनाते। पाप स्वीकार एक आनंद का संस्कार है।
निश्चय यह स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक उत्सव है। मंगलवार 14 सितंबर को संत पापा ने कोशिश के स्टेडियम में युवाओं को निमंत्रण दिया था कि वे पापसिका संस्कार को एक नए तरीके से जिएं। संत पापा ने पापसिका संस्कार के एक नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जो अन्य ख्रिस्तों के अनुभव से भिन्न है तथा एक निश्चित ऐतिहासिक विरासत से अलग। संत पापा ने कहा था कि पापसिका संस्कार में सबसे पहले जीवन के उन क्षणों में सुधार आता है जिनमें हम उदास होते हैं। जवान युवती पेत्रा के सवाल पर कि वे और उनके साथी किस तरह ईश्वर की करुणा के रास्ते पर आने वाली बाधाओं से ऊपर उठ सकते हैं, संत पापा ने दूसरा सवाल किया, यदि मैं पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं जब आप पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, निश्चय ही इसका उत्तर पाप है, किंतु क्या पाप ही हमारे पाप स्वीकार का मुख्य बिंदु है? क्या ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने बारे सोचें, अपने पापों के बारे सोचें, अथवा उनके बारे में सोचकर उनके पास जाएं? संत पापा ने बुडापेस्ट में ख्रिस्त तरीके के बारे बतलाते हुए कहा था कि यह पीछे लौटने, अपने आप से बाहर निकलने और ईश्वर के लिए जगह खाली करने से शुरू होता है। यही तरीका पाप स्वीकार में भी लागू होता है। मैं पाप स्वीकार संस्कार के केंद्र में नहीं हूँ, अपने पापों की सूची से अपमानित, शायद एक ही तरह के पाप पुरोहित के सामने स्वीकार करने के लिए कठिन होता है, बल्कि इस मुलाकात के केंद्र में ईश्वर हैं, जो स्वागत करते, आलिंगन करते, क्षमा देते और उठाते हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा था कि हमें पाप स्वीकार के लिए सजा पूरा करने के मतलब से अपमानित रूप में नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक बच्चे के रूप में पिता से आलिंगन प्राप्त करने हेतु जाना चाहिए। और पिता हमें हर एक परिस्थिति में ऊपर उठाते हैं, वे हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। ईश्वर हमेशा क्षमा करते हैं। हम किसी न्यायाधीश के पास नहीं जाते जो लेखा जोखा रखता है, बल्कि यीशु के पास जाते हैं जो हमसे प्रेम करते और हमें चंगाई प्रदान करते हैं। संत पापा ने सलाह दी कि एक पुरोहित को ईश्वर के स्थान पर होने का एहसास करना चाहिए, जो हमेशा क्षमा करता, आलिंगन करता और स्वागत करता है। पाप स्वीकार में हम ईश्वर को पहला स्थान देते हैं। यदि ईश्वर मुख्य पात्र हैं, तो सब कुछ सुंदर और पाप स्वीकार संस्कार एक आनंद का संस्कार बन जाएगा। जी हाँ, यह भय और अन्याय का नहीं बल्कि आनंद का संस्कार बनेगा। संत पापा ने प्रश्न किया, ईश्वर कब नाराज होते हैं? क्या क्षमा की याचना करने पर? कभी नहीं। ईश्वर को तभी दुख होता है जब हम सोचते हैं कि वे हमें क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि यह ऐसा कहने के समान है, आप प्रेम करने में कमजोर हैं, जबकि ईश्वर क्षमा करने में आनंदित होते हैं। जब कभी वे हमें उठाते हैं, वे हम पर विश्वास करते हैं, जैसा कि उन्होंने पहली बार किया था। वे निराश नहीं होते, बल्कि हम हताश हो जाते हैं। वे पापियों को हमेशा पापी की तरह नहीं देखते, बल्कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की तरह देखते हैं। वे लोगों की गलतियों को नहीं देखते, बल्कि प्यारे बच्चों के रूप में जो घायल हैं और जिन्हें अधिक सहानुभूति और कोमलता की जरूरत है। हम इसे ना भूलें। जब कभी हम पाप स्वीकार करते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। संत पापा ने कहा कि पृथ्वी पर भी ऐसा ही हो। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए वैटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक का कहना है कि सुरक्षित पेयजल तक पहुंच एक बुनियादी मानवाधिकार है। परमधम पीठ का कहना है कि पानी कोई वस्तु नहीं है, या एक सार्वभौमिक प्रतीक और जीवन एवं स्वास्थ्य का स्रोत है, इसलिए सभी के लिए पेयजल एवं स्वास्थ्य की सेवाएं सुनिश्चित करना आवश्यक है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।